Om Shanti. Let's sit back 1 minute silence again. सभी जो खड़े हैं वो बैठ जाए, सभी गाइड्स भाई बहने सभी बैठ जाए. अपने जीवन को देखें. जीवन में चलते चलते कभी कभी कुछ ऐसे सीन सामने आते हैं कि मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. Why did this happen to me? Look at the journey of your life only. प्लान कुछ और किया था, हो कुछ और गया. किसी पर विश्वास किया था, रिटर्न में धोखा मिला. मेहनत बहुत की थी फिर भी सफलता नहीं मिली. और कहीं तो कुछ नहीं सोचा था फिर भी बहुत कुछ मिल गया. ये सब कौन डिसाइड करता है? Who decides what happens to me and with me in my life? If there's anything that I want to change, where do I need to go? जीवन में कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि अचानक जो सोचा ही नहीं था वो हो जाता है. ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? आप में से किस किस ने अपने जीवन की एक स्क्रिप्ट लिखी थी बचपन से या थोड़ा बड़ा होके? ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे. और किसकी जीवन बिल्कुल उसके स्क्रिप्ट के अनुसार आइडेंटिकल चली है? Does it go according to the way we planned? किसी के लिए more or less according to plan चलती है, लेकिन किसी के लिए एकदम ही plan से बदल जाती है. होता है या नहीं होता किसी का? तो कभी कभी मन question नहीं करता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अचानक ऐसा क्यों हो गया? और जब mind ये question करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, then the mind looks for answers. And generally, जब भी मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो हमारी उंगली किसकी तरफ जाती है? आपकी उंगली किसकी तरफ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है. क्यों जाती है ऊपर की तरफ? क्यों जाती है ऊपर की तरफ? क्योंकि बचपन से हमने सुना था कि जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है. सुना ना ऐसे, एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, राइट? आप सारा दिन इतने हेल्थ इश्यूज से वर्क कर रहे हैं. कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई चीज एकदम सिंपल थी, सहज थी, लेकिन सडनली कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी. और कोई चीज लगती थी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एकदम से सहज रीति से क्रॉस हो जाएगी. ऐसा होता है? चीजें दिखती हैं कि ये हमारी कैपेसिटी से बाहर हैं, कई बार दिखती है या नहीं दिखती है? दिखती है ना. तो जब हम कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, देन दैट मीन्स एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन माई लाइफ, गुड, ब्यूटिफुल एंड समटाइम्स नॉट सो वेरी गुड, सब कुछ किसकी मर्जी से हो रहा है? परमात्मा की मर्जी से हो रहा है. इज दैट राइट? इज दैट राइट? एक सेकंड के लिए सोचे, इफ रियली दिस वर्ल्ड वॉज रनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, अगर सच में ये दुनिया परमात्मा की मर्जी से चल रही होती तो एक वर्ड में सोचो ये दुनिया कैसी होती, परफेक्ट होती। और आज क्या हमारा भाग्य परफेक्ट है? हर रोज देखो तो कहां क्या, कहां क्या, कहां क्या, छोटे बच्चे के साथ क्या, आप इतने छोटे बच्चों को इस दुनिया में लेकर आते हैं, कभी आपका मन क्वेश्चन नहीं करता कि बच्चा पैदा होते ही उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भगवान करेगा ऐसे छोटे से बच्चे के साथ कुछ, कि किसी के बच्चा पैदा होते ही उस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कोई इश्यू है, कोई ऑर्गन के साथ प्रॉब्लम है, पैदा होते ही परमात्मा एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा क्यों करेगा? क्वेश्चन आना चाहिए ना। अगर हम अपने बच्चों का भाग्य लिखें, इफ वी गेट द पावर टू राइट द डेस्टिनी ऑफ आवर चिल्ड्रेन, तो हम अपने बच्चे का भाग्य कैसे लिखेंगे? हाउ वुड यू राइट द डेस्टिनी ऑफ योर चाइल्ड? कैसा भाग्य लिखेंगे, कैसा भाग्य लिखेंगे? सपोज आपको अपने बच्चे की हेल्थ लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? साल में कितनी बार थोड़ा बीमार? एक भी बार नहीं, फिर सारे डॉक्टर क्या करेंगे? एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर भगवान भाग्य लिखना शुरू कर दे तो आपका प्रोफेशन तो बिकॉज देन देयर विल बी नो पेन, नो सॉरो, नो डिजीज, नो डिजीज तो नो डॉक्टर होगा या नहीं होगा? जब हम अपने बच्चे के भाग्य में कभी बीमारी नहीं लिखेंगे तो फिर भगवान भी हमारे भाग्य में कभी बीमारी नहीं लिखेगा। हम अपने बच्चे की पढ़ाई लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाग्य? हमेशा फर्स्ट 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 फर्स्ट, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अगर हमारे दो बच्चे हैं, एक बहुत आज्ञाकारी है, दूसरा थोड़ा मस्ती करता है, अब दोनों का भाग्य लिखना है तो कैसा लिखेंगे? सेम, ऐसे थोड़ी होता है। जो ज्यादा आज्ञाकारी है उसका भाग्य थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए? हाँ, मां के लिए दोनों सेम है। अच्छा, तो परमात्मा के लिए हम सब कैसे होने चाहिए? सिंपल है ना। जब एक मां के लिए दोनों बच्चे सेम है, वो दोनों का परफेक्ट लिखेगी, तो परमात्मा भी अगर बच्चों का लिखेगा तो सबका कैसे लिखेगा? सेम लिखेगा। आज आपके हॉस्पिटल में सब बच्चे सेम भाग्य के साथ पैदा हो रहे हैं? नहीं, नहीं। तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए ना। दो लॉज हैं जो फॉलो होने चाहिए। अगर परमात्मा हम सबका भाग्य लिख रहा है तो वन, इट शुड बी परफेक्ट, एंड सेकंड, इट शुड बी इक्वल। आज ना हमारा भाग्य परफेक्ट एंड ना हमारे भाग्य इक्वल। एक और कॉन्सेप्ट है जो बचपन से सुना, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, राइट? ये सुनो, अब दोनों कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। एक, जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, और दूसरा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। क्या दोनों राइट हो सकते हैं? क्या दोनों राइट हो सकते हैं? अगर क्या किया, अगर गलत कर्म किया तो भगवान उसका, अच्छा अभी कल अगर आपका बच्चा गलती करे इट्स ट्रू, आपने कहा आपका बच्चा गलती करे तो आप उसको थोड़ा डांट देंगे, लेकिन आप वैसी सजा नहीं लिखेंगे जो आज दुनिया में हमें मिल रही है। वो किसी गलती के लिए भी आप अपने बच्चे के लिए वैसी वाली जीवन नहीं लिखेंगे। आप अगर उसको गलत कर्म करते हुए देखेंगे भी तो फिर उसको उसका रेपरकशन लिखते टाइम आप क्या कर देंगे, थोड़ा सा है ना, कम कर देंगे। नेचुरल है, नेचुरल है। कर्म हमारे आज परफेक्ट नहीं तो फिर फल भी हमेशा हमारा परफेक्ट नहीं। कर्म हमारे सेम नहीं तो फिर फल भी हमारा सेम नहीं। तो दोनों में से कौन सा राइट लगता है कॉन्सेप्ट? दोनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट राइट लगता है? क्योंकि दोनों में से एक पकड़ना पड़ेगा, एक छोड़ना पड़ेगा, तो कौन सा पकड़े? कर्म वाला। अब इसका मतलब जब भी माइंड क्वेश्चन करे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो फिर फिंगर कहां जानी चाहिए? Now the finger can go there and the finger will have to come here. कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, it's a return of my karma. I have done this, it's coming back to me and I'm going to face it now and finish it off. But सारी responsibility किसके पास आ गई? सारी responsibility हमारे पास आ गई. आज हम में से बहुत लोग अपना भाग्य जानने के लिए बहुत कुछ करते हैं. डॉक्टर तो नहीं करते ऐसा कुछ? डॉक्टर करते हैं ऐसा कुछ? जाते हैं किसी के पास अपना भाग्य जानने के लिए? हाँ, जाते हैं अपना भाग्य जानने के लिए. आपके पास कभी पेशेंट आते हैं जो आपको बोलते हैं, डॉक्टर बच्चा बिल्कुल एग्जैक्टली ये टाइम पर बैठा होना चाहिए? आते हैं ना बोलने के लिए, क्योंकि अगर बच्चा ये टाइम पे डॉट ये टाइम पे पैदा हो गया तो उसका भाग्य फिर बहुत अच्छा होगा. विदाउट रियलाइजिंग कि एग्जैक्ट वो टाइम पे पैदा करने के लिए हम कितना स्ट्रेस जो क्रिएट कर रहे हैं, उस स्ट्रेस का उस बच्चे पर कितना इफेक्ट होगा, बिकॉज वी थॉट कि कोई फोर्स बाहर उस बच्चे का भाग्य डिसाइड कर रहे हैं. तो क्या हम जाते हैं अपना भाग्य जानने के लिए? हम क्यों जानना चाहते हैं अपना भाग्य? Why do we feel the need to know our future? क्यों जानना चाहते हैं? क्यों जानना चाहते हैं? अगर अच्छा, फिर वी वॉन्ट टू चेंज इट. ओके, तो पहले जान लेंगे फिर उसको बदल भी लेंगे. वेरी गुड. अच्छा, अब सपोज आपको आज किसी ने प्रेडिक्शन दिया कि someone very close to you is going to cheat you in the coming 6 months. ध्यान रखना, बहुत नजदीक है ना वो एकदम. आप उस पर पूरा विश्वास करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब धोखा दे देगा. ध्यान रखना, दे दी मैंने आपको प्रेडिक्शन फ्री में. वो भी क्या करेंगे घर जाने के बाद प्रेडिक्शन सुनने के बाद? क्योंकि ऐसी ही तो प्रेडिक्शन मिलेगी ना, कुछ होने वाला है, कुछ अजीब होने वाला है, कोई कुछ करने वाला है. क्या करेंगे घर जाने के बाद ये प्रेडिक्शन सुनने के बाद? ऑटोमेटिकली हाँ, प्रेडिक्शन थी कि 1% विल चीट. आई विल स्टार्ट डाउटिंग ऑलमोस्ट एवरी वन क्लोज टू मी. The one who is going to cheat me at work, it could be at work, I will start doubting my people at home. Prediction थी एक धोखा देगा, हम रिश्ते चार के साथ खराब कर लेंगे उस 6 महीने के अंदर. कर सकते हैं नहीं कर सकते? Fear जो रहेगा हमारे mind पे उस 6 महीने के अंदर, anxiety जो रहेगी, doubt जो रहेगा, prediction right थी 6 महीने के बाद कोई हमें धोखा देगा. If it's written in my destiny, लेकिन उस 6 महीने के अंदर मेरे मन की स्थिति कैसी हो गई? अगर पहले यहां थी तो prediction सुनने के बाद मेरे मन की स्थिति 6 महीने में थोड़ी और down हो गई, और तब जब वो परिस्थिति आएगी, will I be in a better position to face the situation? अब जब हमें कोई prediction बताता है तो भाई साहब ने कहा, फिर हम उसको चेंज करते हैं. चेंज करने के लिए भी युक्ति हम किसी और से पूछते हैं, प्लीज बताओ अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना है. पूछते हैं ना कि ये है तो मुझे अब इसको बदलना है, तो इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या क्या करना है. तो हमें कैसी कैसी युक्तियां मिलती हैं सारी, हाउ एंड विच इज ऑल गुड, हाँ, बट वी नीड टू नो हाउ एंड वॉट टू डू. पूजा करना, हवन करना, और क्या करना, हाँ, रिंग पहनना, और क्या करना, तीर्थ यात्रा भी करना, और क्या करना, दान भी करना. वेरी गुड. अब सोचो अगर कि कोई मुझे चीट करने वाला है कमिंग 6 मंथ्स में, मुझे किस चीज का दान करना चाहिए इस 6 महीने के अंदर? चावल का? मुझे 6 महीने में कोई चीट करने वाला है तो मुझे इस 6 महीने के अंदर किस चीज का दान करना चाहिए? मुझे सबसे पहले वेरी ब्यूटिफुल मुझे अपने डाउट और फियर का दान करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हवन करना चाहिए तो किसका हवन करना चाहिए? ये सारी जो नेगेटिविटी मैंने यहां पकड़ के रखी है उसकी मुझे आहुति डालनी है। पूजा करनी है तो क्या पूजा करनी है कि पूजा में जो मुझे पॉजिटिव पावरफुल वर्ड्स मिलते हैं उनको लेकर मुझे अपनी सोच को बदलना है ताकि अगर मुझे कोई चीट करेगा भी आई बी स्ट्रांग टू फेस द सिचुएशन। आई शुड नॉट गेट हिट सो बैडली बाय द सिचुएशन कि आई कोलैप्स कि इसने मुझे चीट किया कैसे। आई शुड बी स्ट्रांग टू फेस द सिचुएशन, उसकी पूजा करनी है। लेकिन हम सारी ये जो विधि है इसको कहां करते हैं? सिर्फ बाहर कर देते हैं, पूजा कर दी, कई बार तो खुद भी नहीं की, पंडित जी को कहा पंडित जी आप पूजा कर दो। पंडित जी अगर पूजा करेंगे तो भाग्य किसका बढ़िया होगा? वी नीड टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन व्हाट वी आर डूइंग। पूजा करना डजंट मीन कि कोई चीज करना, पूजा करना मीन्स कोई ऐसी चीज करना जिससे हमारी सोच बदलेगी और हमारी सोच से हम अपने कर्म बदलेंगे, अपने कर्म से हम अपना भाग्य बदलेंगे। आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है जो फियर में हम जाते हैं और हमारा फियर एक्सप्लॉइट हो जाता है। होता है या नहीं होता है ऐसा? जब वो टीवी पर सत्यमेव जयते प्रोग्राम आया था ऑन द मेडिकल एपिसोड, तो उसमें डॉक्टर देवी शेट्टी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी। उन्होंने कहा डॉक्टर के पास लोग फियर में आते हैं, फियर में आते हैं, एंड कहा फियर में लॉजिक वर्क करने बंद हो जाती है, एंड ही सेड जब सामने वाले की लॉजिक वर्क करनी बंद हो जाए तो डॉक्टर उससे कुछ भी करवा सकता है। एंड ही सेड दैट्स वेयर एक्सप्लॉयटेशन विल कम इन। सेम थिंग हैपन्स जब हम इधर सब जाते हैं, हम फियर में जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग से जाएं, लॉजिक से जाएं, उस चीज को समझे वो अलग है, लेकिन अगर हम सिर्फ फियर में जाएंगे, अपनी लॉजिक को यूज करना बंद कर देंगे, तो हरेक जो हमें करने के लिए कहेगा हम करते जाएंगे और फिर उसमें कुछ लोग हमें एक्सप्लॉइट कर देंगे। एंड जितना हम अपनी पावर ऐसे दूसरों को देते जाएंगे तो हमारी अपनी पावर क्या होती जाएगी? घटती जाएगी ना। ये भी एक संस्कार बन जाता है। कुछ लोग इतने उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि हर एक चीज पूछ के करेंगे, ट्यूसडे को करो या वेडनेसडे को करो, 10 बजे करो या 11 बजे करो, लाल रंग पहनो या पीला रंग पहनो। तो पूरी अपनी जीवन की पावर किसको दे दी? कंप्लीटली किसी और को सरेंडर कर दी। जितनी पावर किसी और को दे दी अपनी पावर घटती गई, घटती। एवरीथिंग आउटसाइड व्हाट वी आर बीइंग टॉट इज साइंटिफिक, इट इज साइंस, इट हैज अ लॉजिक, बट इट हैज टू बी अंडरस्टूड इन द राइट वे एंड देन इम्प्लीमेंटेड इन द राइट वे। सिर्फ चीजें रख लो, ये रख लो आपका भाग्य बदल जाएगा, ये पहन लो भाग्य बदल जाएगा, नहीं। ये चीजों को अगर यूज करना है तो उसको यूज करके अपनी सोच बदलो, सोच से फिर हमारा भाग्य बदल जाएगा। अगर आज कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाए, ब्लड टेस्ट करवाए और उसको दिखे कि उसका शुगर लेवल बॉर्डरलाइन पे है, तो डॉक्टर उसको बता देगा कि आपकी प्रेजेंट आज की ब्लड शुगर रिपोर्ट, आज के आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आज की जो आपकी दिनचर्या है उस हिसाब से अगर देखा जाए, आने वाले कुछ महीने में, 6 महीने में आपको डायबिटीज हो सकता है। हो सकती है ये प्रेडिक्शन? हो सकती प्रेडिक्शन? दिस इज अ मेडिकली साइंटिफिक एक्यूरेट प्रेडिक्शन। अब कोई उस प्रेडिक्शन को लेकर घर आएगा और कहेगा मुझे डायबिटीज होने वाला है, स्ट्रेस क्रिएट कर देगा, क्या करूं, इसको भी है उसको भी है, दिन रात कितना काम, नींद नहीं, तो उसको 6 महीने से पहले ही हो जाएगा, हो जाएगा ना। कहेगा डॉक्टर बहुत अच्छा है, पहले बता दिया मुझे क्या होने वाला था। कोई और आएगा घर, कहेगा मेरा शुगर लेवल बॉर्डरलाइन पे है, तो आज से लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज। उसको डायबिटीज कब होगा? उसको डायबिटीज कब होगा? कभी नहीं होगा। डॉक्टर सही था, डॉक्टर सही था, सही था। प्रेडिक्शन राइट थी, राइट थी, लेकिन वो अभी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी इफ द प्रेजेंट लाइफस्टाइल कंटिन्यूस। लेकिन उस पॉसिबिलिटी के बाद रियलिटी क्या बनानी है, वो चॉइस किसकी थी? वो चॉइस हमारी थी। ऐसे ही हम भी जब प्रेडिक्शन सुन के आते हैं तो लेट अस ऑलवेज रिमेम्बर इट्स ओनली अ प्रेडिक्शन येट। अकॉर्डिंग टू माय प्रेजेंट संस्कार, इफ आई चेंज माय संस्कार माय रियलिटी विल चेंज। द पावर इज विद मी। लेट अस नॉट गिव अवे द पावर टू अदर पीपल टू कंट्रोल आवर डेस्टिनी। सारा दिन में अगर हम इस एक लाइन को पक्का पकड़ के रखें, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, तो पूरा अटेंशन किस पर आ जाएगा? अपने कर्म के ऊपर। जो कुछ हम सोचते बोलते और करते हैं, जो कुछ हम सोचते बोलते और करते हैं इस एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं रेडिएट करते हैं। सारा दिन में चेक करना है, जो हम सोचते बोलते और करते हैं इस एनर्जी दैट वी क्रिएट रेडिएट आउट इनटू द वर्ल्ड। हम जब अपने कर्म को चेक करते हैं, हम जनरली बोल और कर्म के लेवल पे चेक करते हैं कि मैंने अच्छा बोला, मैंने प्यार से बिहेव किया। हम में से किस किस को आता है कि हम नेगेटिव सोच के किसी से प्यार से बात कर सकते हैं? आपको नहीं आता? नहीं आता किसी के लिए नेगेटिव सोच के प्यार से बात करना? नहीं आता? मैं करके दिखाऊं आपको? अभी आता है? नहीं आता? हाँ, सपोज मैं भी बहन के पास जाऊं और उनको कहूं यू गोइंग ए वेरी ब्यूटीफुल साड़ी, कहां से खरीदी, आपकी चॉइस इतनी अच्छी है, नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे मुझे भी लेके जाना अपने साथ में, और अंदर से सोचू पता नहीं आंख बंद करके खरीद के आई, देखा नहीं था खरीदने के टाइम क्या खरीदा, ये एज में क्या ये कलर सूट करता है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? करते हैं, करते हैं। अब उसको कौन से कार्मिक अकाउंट में डालेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? लेकिन हम क्या चेक करते हैं, मैंने बहुत प्यार से बात की उनसे, मैंने बहुत अच्छी तरह से बिहेव किया उनके साथ, लेकिन हम ये नहीं चेक करते मैंने उनके लिए कैसा सोचा। तो स्पिरिचुअलिटी टीचर्स अस कर्मा इज नॉट एट द लेवल ऑफ वर्ड एंड एक्शन, कर्मा स्टार्ट्स एट द लेवल ऑफ थॉट, बिकॉज कर्म ओनली मीन्स एनर्जी दैट वी आर रेडिएटिंग आउट, दैट इज आर कर्म, एनर्जी दैट वी आर रेडिएटिंग आउट। अब इस फ्लो को सारा दिन ध्यान में रखना है, जो एनर्जी हमसे निकल बाहर जा रही है वो है कर्म, जो एनर्जी बाहर से हमारी तरफ आ रही है सिचुएशंस, लोगों का हमारे साथ बिहेवियर, ये है एनर्जी जो बाहर से हमारी तरफ आ रही है वो है हमारा। एक है एनर्जी जो हमसे बाहर जा रही है वो है कर्म, एक है एनर्जी जो बाहर से हमारी तरफ आ रही है वो है हमारा, वो है हमारा फल, वो है हमारा भाग्य। अब हमें दोनों के बीच में कनेक्शन पता चल गया कि जो एनर्जी सामने से मेरी तरफ आ रही है वो एनर्जी मैंने ही पहले कभी ना कभी भेजी थी। इट्स ऑन इट्स रिटर्न जर्नी, इट्स ऑन इट्स रिटर्न जर्नी। सपोज आई टेक अ बॉल फ्रॉम हियर and I hit it on the wall there at the back. तो मेरे control में वो ball कब तक है? यहां से पकड़ा वहां पे मारा, angle, speed, direction सब कुछ in my control. But once the ball is out of my hand, anything in my control after that? No. Now this ball is going to go from here, hit that wall, come back. वो ball कब वापस आएगा? एक minute बाद भी आ सकता है, एक दिन बाद भी आ सकता है, एक साल बाद भी आ सकता है, और कई कई साल बाद भी आ सकता है। लेकिन 100% ये है कि जो बॉल निकल गया वो बॉल वापस आना जरूर है, आना जरूर है, ये पक्का हो गया। अब जब बॉल वापस आ रहा है, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? बॉल वापस आ रहा है, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? जी सोचो, एनर्जी आपके पास सामने से वापस आ रही है, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? कैच करना उसको, हाँ। और कैच करना मीन्स क्या करना है? सपोज बहन यहां खड़े हो और सूप के सामने मुझे कुछ बहुत रूडली बोल दे, बॉल सामने से आ रहा है, व्हाट कैन आई डू? हाँ जी, उससे बचने की कोशिश करो, मतलब मैं हिल जाऊं इधर से? वी हैव टू रिमेम्बर वो बॉल हमारे लिए है, हम जहां जहां भागेंगे, हम जहां जहां भागेंगे, हम देश छोड़ के दूसरे देश भी अगर चले जाएंगे, वो बॉल हमारे पास ही आने वाला है। इट्स लाइक एन SMS विच somebody हैज सेंट, इट doesn't मैटर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आई एम इन, इट विल कम ऑन my फोन ओनली, इट can नॉट गो anywhere एल्स। अब मेरे पास एक चॉइस है, जो बॉल सामने से आ रहा है हम उसको कुछ नहीं कर सकते, नथिंग। लेकिन जिस क्षण हमारा सामने से बॉल आ रहा है, उसी क्षण हम एक नया बॉल फेंकते हैं। ये बहन खड़े होकर अभी सबके सामने मुझे कुछ कहे, ये बॉल सामने से आ रहा है, नथिंग इन माय कंट्रोल। लेकिन हाउ आई विल फील नाउ, हाउ आई विल बिहेव एंड व्हाट आई विल से, दैट इज द न्यू बॉल विच आई एम थ्रोइंग फ्रॉम हियर नाउ। तो हमारे कंट्रोल में कौन सा वाला बॉल है? लेकिन हम किस पर कंट्रोल कर रहे होते हैं? हमारा कंट्रोल किस पर रहता है? जो सामने से बॉल आ रहा है। हम कोशिश क्या करते हैं कि जो सामने से बॉल आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, रोक दें, चेंज कर दें, डायरेक्शन चेंज कर दें, और उतनी देर में जो हमारे यहां से बॉल निकल के जाता है वो बॉल फिर गड़बड़ वाला हो जाता है। सपोज शी इंसल्ट्स मी नाउ इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड आई ट्राई टू कंट्रोल हर कि बहन ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगर बोलना भी था तो चुपचाप पीछे के रूम में आके बोलना चाहिए था, सबके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा बोलना ही था तो वो बात को पॉजिटिवली भी बोल सकते थे ना, सुबह से कितना ज्ञान सुन रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग का। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू? आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल व्हाट इज कमिंग फ्रॉम देयर, एंड उतनी देर में यहां से कौन से बॉल्स निकल गए सारे? हर्ट, डिप्रेस्ड, अपसेट, एंग्री, हेट्रेड, आई हेट यू फॉर व्हाट यू हैव डन। तो नया कर्मा भी कौन सा क्रिएट हो गया? पास्ट का बॉल कौन सा आ रहा था? नेगेटिव। प्रेजेंट कौन सा भेज दिया? नेगेटिव। अगली बार कौन सा बॉल आएगा? भाग्य लिख दिया। तो हमारा भाग्य कौन लिख रहा है? हम लिख रहे हैं। सपोज सामने से ब्लैक रंग के बॉल आ रहे हैं हमारी तरफ, आपकी तरफ कोई ब्लैक बॉल्स भेजता है कभी? भेजता है कोई ब्लैक रंग का बॉल? मतलब कोई गलत व्यवहार, कोई झूठ, कोई गुस्सा, कोई इरिटेशन, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज, कोई धोखा भेजता है आपको कोई कभी? हाँ, रोज भेजते हैं। रोज किसको मिलेगा ब्लैक रंग का? रोज मिलता है। जस्ट विजुअलाइज ऑल दोज पीपल, लेकर आओ उनको सामने अपने। कई बार वो हमारे घर में ही सकते हैं लोग। इट कुड बी एनीबडी, इट कुड बी एनीबडी जिससे मुझे एनर्जी कौन सी मिल रही है? Which is not comfortable. अब अपने आप से आज पूछते हैं, अगर सामने से मेरे पास ब्लैक रंग का बॉल आ रहा है, कैन आई सेंड अ व्हाइट कलर बॉल इन रिटर्न? जी डिफिकल्ट, ब्लैक बॉल वापस भेजना इजी? अच्छा ब्लैक जब सामने से आ रहा है तो ब्लैक भेजना इजी है? कुछ एक तो भेजना ही पड़ेगा ना दोनों में से। ब्लैक सामने से आ रहा है, कोई तो थॉट क्रिएट होगी ना उनके बारे में। अब ऑप्शन ये है कि ब्लैक थॉट क्रिएट करनी है या व्हाइट थॉट क्रिएट करनी है। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट व्हाइट? हैबिट ऑफ अच्छा सेंडिंग ब्लैक ब्लड बट टुडे वी गोना डिसाइड ना इज इट पॉसिबल कि हम व्हाइट बॉल भेजें कौन कौन कर सकता है कितनी बार कर सकते हैं क्या होता है सामने से ब्लैक बॉल आता है हम बहुत मेहनत से अभी इतना ज्ञान समझ में आ गया तो धीरे से मेहनत से उठा के एक व्हाइट भेजते हैं और हम क्या सोचते जैसा कर्म वैसा फल तो हम सोचते व्हाइट मैंने अभी भेजा तो व्हाइट ही आएगा रिटर्न में वहां से चार ब्लैक आ जाते थोड़ी देर के बाद होता है कि नहीं होता है सर और हम कहते क्या ज्ञान सारा गलत मैंने तो अच्छा कर्म किया हा? सामने से क्या आया वापस तो दिस डजंट वर्क जैसा कर्म वैसा फल लाइन होल्ड्स ट्रू लेकिन अगर मैंने यहां से व्हाइट बॉल भेजा फिर वहां से चार ब्लैक क्यों आ गए वेरी गुड पहले वाले 100 अभी तक उनके स्टॉक में पड़े हैं तो आपको 101 भेजना पड़ेगा बाय द टाइम द फर्स्ट व्हाइट बॉल विल कम फ्रॉम देयर यस और नो कितना इजी है सारा दिन अगर इसको ऐसे ही विजुअलाइज करें हाँ कितना इजी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टार्ट सेंडिंग प्योर एनर्जी वी डोंट इवन नीड टू वेट कि वो वापस कब आएगा जब हम भेज रहे हैं तभी हमें मिल जाता है उसी क्षण कोई हमसे नफरत करे और हम भी उससे नफरत करें तो उसी क्षण इफेक्ट किस पर आने वाला है पहले बाद में जो रिटर्न आएगा वो तो आएगा लेकिन उसी क्षण भी तो फील होता है और कोई हमसे गलत करे और हम उससे प्यार से बात करें तो सबसे पहले बेनिफिट किसको होने वाला है तो आज से ये प्रैक्टिस करना शुरू करें इज इट डिफिकल्ट कि कोई हमारे साथ गलत करे बहुत बुरा करे हो सकता है बहुत बड़ा वाला ब्लैक बॉल भेजे और हम उसके लिए ब्लेसिंग्स करें Practically difficult. अच्छा suppose I cheat you, ठीक है I cheat you, your hospital gets affected, your business मतलब your earning gets affected, everything gets affected, and you have to think about me. Thought to create होगा ना So what would you like to think for me? आप मेरे लिए कैसा सोचना चाहेंगे सोचो मेरे लिए मैंने आपको धोखा दिया चीट किया आपका हॉस्पिटल अफेक्ट हुआ सारे आपके पेशेंट्स भी ले लिए गलत काम करके अब आप सोचो मेरे लिए भेजो जी आप मेरे पे केस करेंगे केस कैसे कर सकते हैं इलीगल ने कुछ किया ऐसे ऐसे गलत गलत करके कर दिया सारा वेरी गुड बहन इज क्वाइट वोकल मन मन में आपको गाली देंगे बुरा करेंगे आपको बद्दुआ देंगे नो अंडरस्टूड एब्सोल्युटली तो मन में गाली देंगे इसका सब बुरा हो इसके पास कोई पेशेंट ना जाए अगर जाए वो पेशेंट के साथ इतना गलत हो कि उसको देख के फिर कभी कोई और पेशेंट ना जाए उसके पास ऐसा भी हो सकता है ना कुछ तो इसके हॉस्पिटल में एक बड़बड़ होना चाहिए फिर इसके पास कोई नहीं जाएगा ये सब थॉट क्रिएट करते करते अपना हैप्पीनेस इंडेक्स कहां तक पहुंचेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप कितना भी सोच लो सामने वाली कुर्सी पर बैठ के कि मेरे पास कौन आए या कौन नहीं आए आपके सोचने से मेरा भाग्य नहीं लिखा जाता अगर आपकी सोच से आप मेरे पेशेंट्स कंट्रोल कर लेते तो किसी को मत आने दो मेरे पास लेकिन आप जब ऐसा सोच रहे होंगे ना तब गलती आपसे हो जाएगी आपके पेशेंट के साथ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी एंड मे बी आई एम डूइंग वेरी वेल ऑन द अदर साइड वी ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर हमारी सोच दूसरे का भाग्य नहीं लिखती हम सारा दिन दूसरे के भाग्य के बारे में सोच रहे हैं हम अपने बच्चे के लिए भी जब बहुत अच्छा भाग्य सोचते हैं ना वो वैसा नहीं होता जो हमने सोचा होता है हमारी सोच किसी का अच्छा भाग्य भी नहीं लिख सकती हमारी सोच किसी का बुरा भाग्य भी नहीं लिख सकती हमारी सोच सिर्फ और सिर्फ हमारा भाग्य लिख सकती है क्या हम ये भी थॉट क्रिएट कर सकते थे कि उनके पास भी पेशेंस आए, उनका भी सब बहुत अच्छा हो और मेरे पास भी आए? बहुत मुश्किल है क्या ये थॉट क्रिएट करना? इज इट रियली डिफिकल्ट टू थिंक लाइक दिस? उनको भी बहुत सक्सेस मिले, मुझे भी सक्सेस मिले, वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, उनके घर में भी सब अच्छा हो, मेरे घर में भी सब अच्छा हो. इज इट रियली डिफिकल्ट टू थिंक लाइक दिस? एंड जस्ट बाय थिंकिंग लाइक दिस वी आर क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल प्रेजेंट एंड वी आर सिक्योरिंग अ वेरी हैप्पी फ्यूचर फॉर आर सेल्व्स. व्हाइट बॉल भेज सकते हैं? भेज सकते हैं? श्योर, थैंक यू. ना से जब हां होती है ना तो मन कहता है ओके, नाउ आई विल फॉलो व्हाट यू सेड. मन को तो दोनों करने आते हैं. मन तो बददुआ भी क्रिएट कर सकता है, मन तो दुआ भी क्रिएट कर सकता है. मालिक को मन को बताना पड़ेगा कौन सी वाली थॉट क्रिएट करनी है. हमारे गलत सोचने की कोई लिमिट नहीं है. जैसे बहन ने कहा, हम बैठ के लिए किसी के लिए इतना गलत सोच सकते हैं, हम उनको बैंक्रप्ट भी करवा सकते हैं अपने माइंड में, हम उनके फ्यूनरल पे भी जाके आ सकते हैं. सोचने की कोई लिमिट नहीं है किसी के लिए गलत, बट इसी तरह किसी के लिए अच्छा सोचने की भी लिमिट नहीं है. थॉट पावर है ना, या तो इस डायरेक्शन में ले जाओ या फिर उस डायरेक्शन में ले जाओ. जिस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, आई ओनली नीड टू रिमेम्बर, मेरा भाग्य भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है. फिर उनका भाग्य नहीं, मेरा भाग्य उस डायरेक्शन में जा रहा है. भेजे वाइट बॉल्स? भेजे? पक्का? इजी? क्योंकि हम एक्चुअली वो वाइट एनर्जी किसको दे रहे हैं? हम अपने आप को दे रहे हैं. हम किसी और को तो दे ही नहीं रहे हैं. वट एवर वी डू, वी आर डूइंग इट फॉर आवर सेल्व. सपोज हमने किसी के बारे में कुछ पुरानी बातें पकड़कर रखी हैं, यहां पर किसी के चित्त पर है पुरानी बातें पकड़कर रखी हुई, पास्ट? कोई है जिसको क्षमा नहीं किया अभी तक? बहुत सारे हैं. अच्छा, आज क्या करना पड़ेगा? उन सारों को, सारी फाइल्स को इकट्ठा सिलेक्ट करो, डिलीट मारो. देखा कितना इजी है. क्यों हमने उनको डिलीट करना है? क्योंकि अब हमें समझ में आया कि उन्होंने जो भी किया, इट्स लाइक यू लिटरली सेंड अ बॉल टू मी फ्रॉम देयर, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप जो बॉल भेज रहे हैं वो वही वाली है जो मैंने पिछली बार यहां से भेजी थी. है या नहीं है? आज सुबह जो हमने क्लास की मॉर्निंग में सेंटर पर परमात्मा महावाक्य सुबह सुनते हैं, तो आज जो क्लास की उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन थी, हर कर्म करने से पहले उस कर्म के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को सोच के कर्म करना. पास्ट को क्या सोचना है कि जो भी सीन मेरे सामने आ रही है ये क्यों आ रही है? पास्ट में मैंने कभी ना कभी ऐसा कुछ किया था. प्रेजेंट में मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना है, और जो प्रेजेंट में मैंने किया वो मेरे फ्यूचर में डिसाइड हो गया. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास? जब भी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आते हैं, अभी हम परसों शूटिंग कर रहे थे अवेकनिंग का एक एपिसोड, तो सुरेश भाई के साथ डायलॉग हो रहा था ना, तो सुरेश भाई इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे. तो भाई ने कहा, एक दिन क्या हुआ पिछले हफ्ते, मैं सुबह उठा और मेरे बेड से उठा तो छोटी सी टेबल वहां पड़ी थी जिसपे मैं खाना खाता हूं, और मेरा पैर उस टेबल पर जोर से लग गया. तो कहते मैंने बहुत शोर मचाया घर में, कौन है, दिखता नहीं, मालूम नहीं, टेबल सामने रख दिया, अंधेरे में मैं उठा, चोट भी लग गई, पूरे घर को सबको डांट दिया, स्टाफ को भी, वाइफ को भी, सबको. धीरे से आके किसी ने कान में कहा, सर रात को आपने ही रखी थी वहां पे. जैसे ये पता चला कि आपने ही रखी थी वहां पे, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अच्छा मैंने रखी थी, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा या नहीं होगा? अब हम क्या कहेंगे? चलो आज हम इसको ध्यान से रखते हैं। जैसे ही हमें ये समझ में आ जाता है कि जीवन में जितने विघ्न मेरे सामने आ रहे हैं वो मैंने ही रखे थे वहां पे, जीवन में लोग मेरे साथ जैसे बिहेव कर रहे हैं वो मैंने ही रखा था वहां पे, तो फिर हम शोर नहीं मचाएंगे ये किसने किया, क्यों किया, ऐसे क्यों किया। हम तुरंत अपने आप को आंसर क्या देते हैं, ये मैंने किया था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब फोकस किस पे, इस बार क्या करना है। जिसकी भी तरफ से ब्लैक बॉल आ रही है, छोटी सी या बहुत बड़ी, प्लीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेल योरसेल्फ, ये मैंने भेजी थी इसलिए वापस आ रही है। अगर नहीं पसंद आ रही तो इस बार फिर से नहीं भेजते, नहीं तो पिंग पोंग ब्लैक जाती है ब्लैक आती है, फिर ब्लैक जाती है ब्लैक आती है, वो पिंग पोंग एनर्जी गेम चलता ही रहता है। तो आज से सामने वाला चाहे कुछ भी भेजे, हमने कौन सी भेजनी है, पक्का इजी। एंड एवरी टाइम यू डू दैट, इवन इफ इट्स अ लिटिल एफर्ट, टेल योरसेल्फ आई एम ओनली डूइंग इट फॉर माय ब्यूटिफुल फ्यूचर, I'm not doing a favor to anybody else. I'm not forgiving anybody else. I'm forgiving myself. और ये चीज अगर हम अपने पेशेंट्स को भी समझाएं, पुरानी बातें यहां पकड़ के रखते हैं, चित्त पर इतना दर्द, इतनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, तब तो जाकर कुछ सालों के बाद शरीर में वो बीमारी का रूप ले लेती है ना। अगर वो अपने मन को साफ करते जाएं, तो आपके पास आने वाली, नहीं आपके केस में तो डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मली लोगों के पास आने वाली लाइन कम हो जाएगी डॉक्टर्स के पास। अगर हम चित्त को साफ कर दें तो हमारे शरीर के ब्लॉकेजेस भी क्या होने लगेंगे, बेटर होने लगेंगे। तो ये सारा कुछ अगर डॉक्टर सिखाने लग जाए पेशेंट को, जब डॉक्टर कुछ कहता है ना पेशेंट को, तो लोग आंख बंद करके स्वीकार करते हैं, करते हैं नहीं करते। तो सभी अपने पेशेंट्स को ये समझाओ, हाउ टू बी हैप्पी, यू विल बी डूइंग देम, उनकी सेवा करके आप अपना भाग्य लिख देंगे। जब हमें समझ में आता है ये, फिर हमें कर्म फिलोसफी से एक और चीज समझ में आती है कि कई बार कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वो हमें ब्लैक बॉल भेजते रहते हैं। ऐसा लगता है कोई रिश्ते में कभी, ऐसा लगता है रिश्ते में कभी? तब हमें एक बात सिर्फ याद रखनी है कि कर्म जिसने किया वो है मैं यहां। सपोज मैं इनको अभी गुस्सा कर रही हूं, शोर मचा रही हूं, जोर जोर से डांट रही हूं, गलत बोल रही हूं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रही हूं, उस क्षण मुझे हार्ट अटैक हो गया और मुझे आत्मा ने शरीर छोड़ा और फिर मैंने दूसरा शरीर लिया और फिर ये और मैं फिर कभी मिले सामने सामने, तो कुछ एनर्जी एक्सचेंज होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक अनदर मीटिंग, आज इस ड्रेस में मिल रहे हैं, कल नेक्स्ट ड्रेस में मिलेंगे, ड्रेस चेंज हो जाएगी, मीटिंग की क्वालिटी जिस क्वालिटी पर पिछली मीटिंग छोड़ी थी उस क्वालिटी पर नेक्स्ट मीटिंग शुरू हो जाएगी। अब हमारी चॉइस है कि नेक्स्ट मीटिंग में सेम क्वालिटी कंटिन्यू करनी है। जस्ट लाइक दो लोग कभी मिलते हैं, बात करते करते कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो मीटिंग की क्वालिटी कैसी हो गई, थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो गई, अपने अपने घर गए, अगले हफ्ते फिर मिले, सेकेंड मीटिंग की क्वालिटी कैसी होगी, सेकेंड मीटिंग की क्वालिटी कैसी होगी, थोड़ी सी हैवी हो जाएगी ना। अब अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो सेकेंड मीटिंग और नेगेटिव हो गई, फिर थर्ड मीटिंग कैसी होगी, बात ही करना बंद कर देंगे एक दूसरे से, फोर्थ मीटिंग कैसी होगी, देख के दूसरे डायरेक्शन में ही चले जाएंगे। विच मीन्स एवरी नेक्स्ट मीटिंग जो एनर्जी है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अनलेस किसी भी एक मीटिंग में दोनों में से कोई एक कहेगा, छोड़ो जो पहले हुआ, आज से आई विल बी डिफरेंट, कर सकता है कोई एक? और जो वो एक करेगा वो उस मीटिंग को भी बदलेगा और उसके बाद की हर मीटिंग को बदल देगा। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, family, friends, colleagues, even patients, we are not meeting most of them for the first time. We've met before. And jaisi hamari pichli meeting thi, usi quality pe hamari ye meeting shuru hui hai. Majority meetings achhi quality ki hain. Lekin kuch ek meetings mein agar energy exchange achha nahi hai, to hame aaj choose karna hoga ki hamari is meeting ki quality kaisi rahegi. Am I ready to change? Jinke saath bhi hamara pichla karmic connection thoda sa bhari, thoda sa negative hoga, to wo hamare bahut nazdeek aayenge. Aayenge ya nahi aayenge? Suppose main aapko cheat karun, aapka sara nuksan ho jaye, aapka business band ho jaye, bahut nuksan ho jaye. Aapki khushi jaye, aapki sehat jaye, aapke bachchon ki padhai ruk jaye. Itna impact aa gaya mere ek karma ka of cheating. 50 saal beet gaye. Aapka bhi costume change, mera bhi costume change. Ab hum dono jab ikatthe phir milenge, to kuch hoga ya nahi hoga? Hoga ya nahi hoga? Hona chahiye? Hona chahiye? Kya ban kar aa sakte hain meri life mein? Son and daughter, why so sweet there? Bachcha ban ke aayenge itna dukh dene ke liye? Haan? Achha, saas bahu ban kar aayenge. Chalo bhai. Ab agar aapki saas aapko tang kar rahi hai ya aapki bahu aapko tang kar rahi hai. Either ways, we have to remind ourselves ke kya remind karenge? कि पिछली बार हम करके आए हैं, इस बार ठीक कर ले, नहीं तो हम अगली बार फिर मिलेंगे. अगर फिर नहीं मिलना चाहते और अगर मिलना चाहते हैं तो एक ब्यूटीफुल वे में मिलना चाहते हैं, तो आज के प्रेजेंट को चेंज कर लें. कोई किसी को तंग नहीं कर रहा होता, सिर्फ हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं. तो ये जो सारी आत्माएं हैं जिनके साथ हमारा कोई कार्मिक कनेक्शन होगा, वो हमारे पास वापस आएंगे और वो एनर्जी एक्सचेंज कंटिन्यूड होगा. जब हमें कर्म फिलोसफी समझ में आ जाता है, तो एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाता है, जो सारी दुनिया आज कह रही है कि लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन. हर एक फेज में कॉम्पिटिशन है, प्रोफेशन में भी कॉम्पिटिशन है. आपके प्रोफेशन में कॉम्पिटिशन है? आपके प्रोफेशन में कंपटीशन है? कंपटीशन है. दो आत्माएं, टू सोल्स बॉर्न इन द सेम फैमिली, टू ब्रदर्स, ट्विन्स बॉर्न एट द सेम टाइम, टू द सेम पेरेंट्स एट द सेम टाइम, सेम स्टार, सेम एवरीथिंग, सेम क्वालिटीज ऑल्सो, सेम इंटेलिजेंस, सेम हार्ड वर्किंग, दोनों डॉक्टर्स बन गए और दोनों ने एक ही दिन सेम एरिया में, सेम शहर में, सेम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल दिया. दोनों का भाग्य सेम आ गया? दोनों का भाग्य सेम आ गया? सब कुछ सेम है, सारे फैक्टर्स सेम हैं, उनका सक्सेस सेम. हां जी, सेम सक्सेस दोनों का क्यों नहीं? सब कुछ सेम, क्योंकि एक हिडन इनपुट फैक्टर है. वी ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर, दो आत्माओं का प्रेजेंट सारा सेम हो सकता है, लेकिन पास्ट दो आत्माओं का कभी भी सेम नहीं हो सकता है. सपोज आज दो बच्चों का कल एग्जाम है, एक पढ़ रहा है, दूसरा टीवी देख रहा है. जो आज टीवी देख रहा है वो कल फर्स्ट आ गया, और जो आज पढ़ रहा है वो कल फेल हो गया. हो सकता है? अब हम देखेंगे, ये तो कल टीवी देख रहा था, आज फर्स्ट आ गया. जो कल टीवी देख रहा था वो 364 डेज पहले पढ़ रहा था, और जो कल पढ़ रहा था We don't know the journey of the soul, no? We only know, ये तो बहुत honest है, फिर भी इसके साथ गलत क्यों होता है? ये तो बहुत hard working है, वो तो ऐसा है, we only seeing कल का दिन. We do not know the long journey of the soul. किसी भी आत्मा के साथ कुछ भी unfair नहीं हो रहा है. हर एक के साथ वही हो रहा है जो उसने मेहनत की है, उसी का उसको रिजल्ट मिल रहा है. हमारे को जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमारे कर्म का फल है. अगर हम अपनी जीवन की यात्रा में सिर्फ अपनी एनर्जी पर फोकस करेंगे, ये मुझे मेहनत करनी है, ये मुझे रिजल्ट मिलेगा. एक इनपुट फैक्टर उसमें पास्ट कर्म का है. सपोज मेरे पास्ट कर्म थोड़ा भारी है एक फैक्टर, तो मुझे क्या होगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा कम मिलेगा. बट दैट्स ओके, दैट्स ओके. अगर हम अभी मेहनत करते रहेंगे, ऑनेस्टी से चलते रहेंगे, तो हमारा प्रेजेंट कर्म धीरे धीरे हमारे पास्ट के कर्म को खत्म करके हमें आगे ले जाएगा. लेकिन अगर उस फेज में हम इधर और उधर देखेंगे और दूसरों के रिजल्ट को देखेंगे और उसको देखकर डीमोटिवेट हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे, जेलस हो जाएंगे कि दूसरों का इतना अच्छा क्यों चल रहा है क्लिनिक, दूसरे इतना क्यों कमा रहे हैं. अगर हम ऐसा सोचेंगे तो फिर हमारा प्रेजेंट कर्म भी कौन सी क्वालिटी का हो गया, प्रेजेंट भी फिर नेगेटिव हो गया ना. और उसमें भी अगर हम दूसरे को पीछे करने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे, कई बार ढूंढ लेते हैं हम, तो फिर तो हमारा प्रेजेंट कर्म कौन सी क्वालिटी का हो जाएगा. तो वी आर ऑन अ जर्नी इन आवर लाइफ, वी आर वर्किंग इन रेफरेंस टू आर कर्मा, नॉट इन रेफरेंस टू द कर्मा ऑफ अदर पीपल. कॉम्पिटिशन एक वर्ड क्रिएट करने से हमने स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जेलसी एंड समटाइम्स रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी शुरू कर दिए. कर दिए नहीं कर दिए? मेजोरिटी लोग रॉन्ग प्रैक्टिस सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं दूसरों से आगे जाने के लिए. जैसा कर्म वैसा फल, इस बात को ऐसे पकड़ के रख लेना है. ये बात हर आत्मा के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जिस प्रोफेशन में आप हैं तो ये बात और भी हाई रिस्क अटेंशन रखने की जरूरत है. क्योंकि आप उस प्रोफेशन में हैं जहां आपके पास हरेक जो आता है वो विश्वास से आता है. विश्वास करते हैं ना हम डॉक्टर पे, हम अपनी जीवन सरेंडर करते हैं आपको, करते हैं ना. दर्द में भी आते हैं कई बार, हमें कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, हम उस दर्द में आते हैं आपके पास. अगर उस सब के हम आए, हम दर्द में आए, फेथ के साथ आए, और अगर उस क्षण आपने हमें थोड़ा सा भी एक्सप्लॉइट किया, थोड़ा सा, थोड़ा, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा कुछ अपने या अपने हॉस्पिटल के फायदे के लिए, तो सोचो कौन सा कार्मिक अकाउंट बना. बना या नहीं बना कार्मिक अकाउंट? कोई आपके पास विश्वास से आया, दर्द में आया और उसको एक्सप्लॉइट हुआ, उसको चीट किया थोड़ा सा भी, तो ये कौन सा कार्मिक अकाउंट बनेगा? इतने ये जस्ट द अदर डे, लास्ट वीक ओनली, 10 days back, दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया फर्स्ट पेज पे, 40% of surgeries that are happening today are actually not needed. Now when I read that line, matlab 40% surgeries are not needed and we are doing it. To aap kisi ke tan, man aur dhan ke sath khel rahe hain. To iska matlab jo karmic account uske sath create kar diya humne, uske tan, man, dhan, sambandh sabke sath connect ho gaye. इसका रिजल्ट हमारे तन, मन, धन, संबंध सबके साथ आएगा. थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा ना. अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान होना ये चाहिए था कि अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा. और हीलिंग में तो खैर दूसरे का नुकसान के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। हीलिंग एंड बिजनेस ये वर्ड मैच नहीं करता। हमारी एनर्जी कौन सी होनी चाहिए? सिर्फ देना देना और देना। उसमें जो हमने अर्न करना है वो तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब हमारी इंटेंशन क्या लेना क्या मिलने पर चली जाएगी तो हमारे देने की एनर्जी क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। लेट्स लेट आवर एनर्जी फ्लो, लेट इट नॉट गेट ब्लॉक्ड बाय दीज थिंग्स। जितनी हमारी एनर्जी फ्लो होगी हमारी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली अच्छी होती जाएगी। लेकिन जितना हम इस मोड में फिट हो जाएंगे तो हमारी एनर्जी ऐसी फ्लो करनी बंद कर जाएगी। वी नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। हमारे लिए वो अमाउंट 50, 100, 1000 रुपए का होगा सिर्फ, लेकिन दूसरे के लिए 1000 रुपए कई बार एक बहुत बड़ी चीज होती है। होती है या नहीं होती है? और सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है, दूसरे के मन में जो डाउट्स और दर्द क्रिएट होते हैं उसकी वजह से। अगर मुझे आज कोई कह दे, अच्छा आपको ये दर्द हो रहा है, आप एक स्कैन करवाओ, आप ये जाके अल्ट्रासाउंड करवा लो, ठीक है, वो 2000 रुपए इज नथिंग फॉर मी, बट ऑल द थॉट्स दैट आई विल क्रिएट कि मुझे ये करवाना पड़ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसा है। अगर मैं 24 घंटे भी दर्द और डर में रही उस वजह से, आपने वो 2000 तो कमाए, लेकिन वो 2000 के साथ एनर्जी कौन सी कमाई? एनर्जी कौन सी कमाई? वो 2000 आपके घर मेरे दर्द और डर की एनर्जी के साथ आएगा। ऐसा धन कमाना नॉट वेरी सेफ फॉर अस एंड आवर फैमिली, क्योंकि फिर हमारे घर धन तो आता जाएगा लेकिन धन के साथ ये स्ट्रेस दर्द और एंजाइटी भी आ जाएगा, क्योंकि उस धन में किसी और की एंजाइटी की वाइब्रेशन लगी हुई है। थोड़ा सा अटेंशन, हम कोई ऐसा कर्म ना करें जिस कर्म से किसी को दुख मिले। हम हमेशा ऐसा कर्म करें जिस कर्म से हर आत्मा को सिर्फ और सिर्फ सुख सहयोग मिले। जितना औरों को सुख देंगे, सिर्फ औरों को ट्रीट नहीं करेंगे, जितना औरों को सुख देंगे तो अपने भाग्य में क्या लिखते जाएंगे? अपने भाग्य में सुख लिखते जाएंगे। तो अपने फायदे से पहले डोंट लुक एट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, डोंट सी व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। जी वहां वो लैब में ये कमीशन होता है, ये तो करना ही पड़ता है, ये दवाई ये करेंगे तो मुझे फॉरेन ट्रिप मिल जाएगा। एक हॉलिडे के लिए किसी और आत्मा को दर्द देंगे? जहां भी इंटेंशन मेरे फायदे की हो जाएगी तो मेरी हीलिंग की एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। हमें किसी से गिफ्ट मिल रहा है, किसी से ट्रिप मिल रहा है, किसी से कुछ मिल रहा है, वो एनर्जी के साथ अगर हम किसी को हील करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का किसमें बेनिफिट है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए क्या सही है, उसमें ही मेरा सही भाग्य लिखा जाएगा। दूसरे क्या कर रहे हैं, लैब्स क्या कर रहे हैं, टेस्ट वाले क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, वी डोंट वॉन्ट टू नो। क्योंकि मुझे सिर्फ किसका भाग्य लिखना है? मुझे सिर्फ अपना भाग्य लिखना है। आप वो प्रोफेशन में हैं जहां बहुत लोग आजकल आपके पास अबॉर्शन करवाने आ रहे हैं ना। एक बार सोचना है, किसी आत्मा का घर बनने से पहले तोड़ दिया, इट्स लाइक गोइंग एंड किकिंग somebody's हाउस। कौन सा कर्म क्रिएट किया? चाहे उसके पीछे का मेडिकल नॉलेज कुछ भी कहे, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, ऑल दैट इज सेकेंडरी। इफ इट्स अ कॉम्प्लिकेशन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इफ यू आर डूइंग इट अदरवाइज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम करने के लिए रेडी हैं तो करवाने वालों की लाइन लग गई है। अगर करने वाले ना होते तो फिर करवाने वाले भी ना होते। पीपल वुड बी सेफर विद देयर लाइफ। आज लोगों को पता है कि ये ऑप्शन तो है, तो ये कार्मिक अकाउंट हमारा नहीं बना। आज कितने सारे यूथ आज गलत काम कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि ये ऑप्शन है। ये कार्मिक अकाउंट किसका बना? पूरे समाज में ये फैल गया, ये कार्मिक अकाउंट किसका बना? लेट्स स्टिक बैक अगेन टू आवर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. लेट्स नॉट कॉम्प्रोमाइज इट जस्ट टू अर्न मोर और टू अचीव मोर. आत्मा की जर्नी पर हमारे साथ सिर्फ दो चीजें जाएंगी, संस्कार और हमारे कार्मिक अकाउंट. ये सारी चीजें तो यहां की यहां ही रह जाएंगी. यहां कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे हमारे बैलेंस शीट में एक लॉस की ट्रांजैक्शन है. बहुतों को सुख देते हैं लेकिन किसी एक के साथ भी थोड़ा गलत किया तो वो ट्रांजैक्शन को हम ओमिट नहीं कर पाएंगे. इट विल कम बैक. वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. सारा दिन में जब आप सबको हील कर रहे हैं, अपने आप को इजी और रिलैक्स्ड रहकर हील करना है. और हमेशा याद रखना है, हम हील कर सकते हैं, हम डेस्टिनी नहीं लिख सकते सामने वाले की. भगवान भी सामने वाले की डेस्टिनी नहीं लिख सकता तो हम कैसे लिखेंगे? कई बार आपने अपना बेस्ट किया होगा लेकिन फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाता है. होता है ऐसा? होता है ऐसा? उसमें गिल्ट नहीं क्रिएट करना कि मेरे से ऐसा कुछ गलत हो गया. ऑलवेज रिमेम्बर, वो आत्मा के साथ जो हो रहा है उसमें उसका भी कार्मिक अकाउंट है. आई ओनली हैव टू बी क्लियर दैट आई हैव डन माई बेस्ट. द रिजल्ट विल नॉट ऑलवेज बी परफेक्ट. द रिजल्ट विल नॉट ऑलवेज बी परफेक्ट क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर उस आत्मा का अपना कर्म भी है. लेकिन अगर उस केस से गिल्ट क्रिएट किया, फिर थोड़ा सा फियर भी क्रिएट हो गया, तो जब मैं नेक्स्ट पेशेंट से मिलने जाऊंगी तो हो सकता है मेरा प्रेजेंट कर्म थोड़ा सा अफेक्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा. तो कभी भी एक आत्मा के कर्म के साथ नेक्स्ट केस में जाएंगे तो हमारा प्रेजेंट कर्म अफेक्ट हो सकता है. वी ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर हमारी कितनी पावर है, हम हमारी क्या पावर नहीं है. आर पावर इज टू डू आर बेस्ट बट अ परफेक्ट डेस्टिनी इज नॉट आर पावर. इज नॉट आर पावर. वो आत्मा, वो परिवार, वो माँ, वो सबके भी अपने बहुत सारे कार्मिक अकाउंट है. उसका बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना कभी भी. नहीं तो वो बर्डन लेंगे तो फिर हम सारा दिन स्ट्रेस तो अननेसेसरली क्रिएट हो जाएगा इस बात को लेकर. और जितना स्ट्रेस क्रिएट होगा फियर और एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी. हमेशा जब हम ओटी में जाएं, प्रोसीजर करना शुरू करें, सब कुछ करें, इज इट पॉसिबल कि हम 2-3 मिनट साइलेंस से स्टार्ट करें? इज इट पॉसिबल कि हम उस ओटी का वातावरण इतना प्योर एक मंदिर की तरह बना दें जहां एक नई रचना आने वाली है? बचपन से जब भी कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जाते थे तो पहले क्या करते थे? सोचो, हर एग्जाम से पहले भी मंदिर माथा टेकते थे. टेकते थे या नहीं टेकते थे? एक एग्जाम भी करना था तो पहले भगवान को याद करके फिर एग्जाम देने जाते थे. आज किसी की जीवन के साथ काम करने जा रहे हैं, आपको नहीं लगता एक मिनट प्रेयर करके फिर करना चाहिए? उसके सामने वो एग्जाम्स क्या लगते हैं? कुछ भी नहीं. लेकिन क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन में आ जाता है, करते 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 हम बस भागते हुए जाते हैं, करते फटाफट वापस आ जाते हैं, है ना? हमारे लिए ये करना वैसे ही हो गया जैसे घर में लोग नमक मिर्ची डाल के सब्जी बना लेते हैं. लेकिन वी आर डीलिंग विद समबडीज लाइफ. आर स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड हैज टू बी एब्सोल्युटली साइलेंट. कनेक्टिंग टू गॉड, प्रेइंग, मेडिटेशन डजंट मीन मैजिक. इट ओनली मीन्स आई टेक दैट पॉज ऑफ 2 मिनट्स सो दैट माई माइंड बिकम्स एब्सोल्युटली calm, relaxed and stable so that the environment of the OT becomes absolutely calm, relaxed, the whole team becomes calm and then we are going to do our best, better than the best. And hum Paramatma ko ek invitation dete hain ki hum instrument hain, ye atma aapka bachcha aa raha hai, aap aao aur ab ye karya karte hain hum sab. To puri vibration kaise ho jayegi? बहुत वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी ताकि अगर किसी के अंदर थोड़ा सा भी फियर या स्ट्रेस या एंग्जाइटी है तो सारा खत्म हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा. और जब पूरा हो जाए तब भी एक मिनट रुक के फिर से साइलेंस में शुक्रिया, तब भी साइलेंस में शुक्रिया जरूर करके और उस आत्मा को बहुत प्यारी सी वाइब्रेशन देके फिर उस कमरे से बाहर निकलना है। ये छोटी छोटी चीजें भी अगर हम करेंगे ना तो हमारा हर कर्म डिवाइन बन जाएगा, ऑर्डिनरी नहीं, हमारा हर कर्म एक रिचुअल की तरह बन जाएगा। रिचुअल में प्योरिटी होती है, तो जब ऐसा करेंगे तो सारा दिन सबको दुआएं देंगे और सबसे दुआएं लेते हुए जाएंगे। तो धन जो हमने कमाना है वो धन कैसा हो, बिल्कुल प्योर, उसमें थोड़ी सी भी कुछ अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे आसपास कोई भी कुछ कर रहे हैं। धन प्योर, दूसरा अनप्योर, जैसा अन वैसा मन, ये सब हमने सुना है लेकिन आज हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। जो हम बाहर खाना खाते हैं, आप में से कोई, अच्छा चलो लेट्स नॉट रेज हैंड्स, जैसा अन वैसा मन मानते हैं, मानते हैं? शांत मन चाहिए, पावरफुल मन चाहिए, खुश मन चाहिए, तो अन कैसा होना चाहिए? अन कैसा चाहिए? अगर उस अन में दर्द होगा, डर होगा, हेट्रेड होगी, एंग्जाइटी होगी, तो वो अन हमारे मन को आकर क्या देने वाला है, क्या देने वाला है? जिस अन में किसी की डेथ की वाइब्रेशन होगी वो अन हमें क्या देने वाला है? जस्ट टू डेज बैक वी वर एट अ फार्म, तो वहां वो रिजॉर्ट है बहुत बड़ा, तो वहां का जो चेयरमैन था वो बहुत प्यारी सी बात शेयर की, कहते हमारे यहां पे 2000 काउज है, एक काउ थोड़ा सा ठीक से नहीं बिहेव कर रही थी, समथिंग वॉज रॉन्ग, तो वहां का जो मैनेजर था उसने डिसाइड किया कि इस गाय को सेल ऑफ करना है। तो वो चेयरमैन ने कहा जब मैं गया उस दिन राउंड पे, वो गाय मेरी तरफ भागती आई जोर से, सबने कहा परे हट जाओ ये गाय को कुछ हुआ है लगेगा, बट वो गाय सीधा उस चेयरमैन के पास गई, उसको कुछ नहीं पता था कि ये सब होने वाला है, और वो गाय अपनी गर्दन से उसकी गर्दन पर बार बार ऐसे फेरती गई, ट्राइंग टू से डोंट सेल मी, प्लीज सेव मी फ्रॉम हियर, बिकॉज शी न्यू हु कुड सेव। क्या जानवरों की थॉट्स एंड फीलिंग्स और वाइब्रेशंस होती हैं? होती हैं। आपके पास घर पे किसी के पास पेट्स हैं, आप देखते हैं, वो सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यस, सिर्फ बोल नहीं सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, राइट? अब इस पशु को हमने लिया 8-10 दिन के लिए कहीं बांध दिया, क्या उसको पता नहीं होगा कि उसको मारा जाने वाला है? पता होगा या नहीं पता होगा? तो वो पशु क्या क्या क्रिएट करेगा वाइब्रेशन? हेट्रेड, एंगर, फियर, एंग्जाइटी। जब हम उस अन्न को खाएंगे तो हम सिर्फ खाना नहीं खा रहे, फिर हम उस खाने के साथ क्या खा रहे हैं? हम ये सारे वाइब्रेशंस खा रहे हैं। जब अन्न में नेगेटिव एनर्जी होगी तो फिर मन पॉजिटिव कैसा होगा, कैसे होगा? जब किसी के घर में डेथ होती है तो क्या उस घर में उस दिन खाना बनता है? कब खाना बनता है? जब उस शरीर को बाहर लेकर जाते हैं, उसके बाद पूरी घर की धुलाई करते हैं, फिर खाना बनता है। फ्यूनरल पर जाते हैं, फ्यूनरल पूरा होता है, सबसे पहली चीज क्या करते हैं? नहाते हैं। नहाए बिना खाना खाते हैं कभी? नहीं खाते हैं। आपसे बेटर किसी को भी नहीं पता है कि एक डेड बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, हमें तो किसी को वो नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज है कि उसके अंदर क्या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या टॉक्सिन्स हैं, क्या सब कुछ है। तो ये हम क्यों नहाते हैं और क्यों खाना नहीं बनाते हैं जिस दिन किसी के घर में डेथ होती है? व्हाट इज द लॉजिक? क्यों खाना नहीं बनता उस दिन उस घर में? क्यों जाने के बाद, धुलाई करने के बाद खाना बनता? व्हाट इज द रीजन? हां जी, नेगेटिव एनर्जी है और इन्फेक्शन भी है, वाइब्रेशन भी अच्छी नहीं है। अच्छा जी, पेस्टिसाइड्स भी है। ओ बैक्टीरिया भी है, मतलब मेरे को नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज आपको है। अगर एक डेड बॉडी के घर में होते हुए खाना नहीं बन सकता तो एक डेड बॉडी का खाना कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है? क्या उसमें ये सारी चीजें नहीं है जो भी आपने कही? We need to stop and think. What are we consuming? हम क्या ले रहे हैं? And if you share with the mother कि ऐसे समय पर अगर वो ले रही है तो वो अपने गर्भ में उस बच्चे को कौन सी वाइब्रेशन दे रही है? हम उनको क्या बताते हैं? इसमें प्रोटीन है, इसमें ये है, व्हिच इज देयर, देयर इज नो डाउट कि उसमें क्या है हेल्थ वाइज, लेकिन वो वाली हेल्थ वाली चीज तो दूसरी चीजों में भी मिल जाएगी ना, मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? लेकिन ये जो वाइब्रेशन साथ में मिल जाएगी इसको फिर नलिफाई कैसे करेंगे उसके बाद? तो अन्न का महत्व अपने जीवन के लिए भी और अपने आने वाली हर मदर को इसकी बात बता, शेयर इट विद देम एंड देन लीव इट टू देम। लेकिन शेयर करना हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि अगर आपको एक सिर्फ हेल्दी बेबी चाहिए तो आप प्रोटीन और ये सब खिलाएं, लेकिन अगर आपको हेल्दी हैप्पी बेबी चाहिए तो फिर आप नेगेटिव एनर्जी वाला खाना नहीं खिला सकते। चॉइस आगे आपकी है, हमें दोनों ऑप्शन उनको बता देने हैं कि जब एक क्रिएशन बन रही है उस समय पर उसका एनर्जी का कितना प्रभाव पड़ता होगा उसके ऊपर। तो ये ध्यान रखना चाहिए ना उस बच्चे के लिए हमें, हम उसको क्या एक डेड एनर्जी से एक लिविंग एनर्जी हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। We need to pause and think. तो सात्विक अन्न सात्विक मन बनाता है। अब सात्विक अन्न मतलब सिर्फ वेजिटेरियन नहीं, लेकिन सात्विक अन्न मतलब किस मनोस्थिति में वो अन्न बनाया गया है। एक अन्न होता है जो हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, उस अन्न में वाइब्रेशन कौन सी होती है, उस खाने में वाइब्रेशन कौन सी होती है? प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मतलब आप खाएं मैं कमाऊं, राइट आप खाएं मैं कमाऊं, तो उस अन्न में वाइब्रेशन होगी थोड़ी सी ग्रीड की। मनी, मनी कॉन्शियस आज जो हम बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं उसका बहुत बड़ा रीजन है हम बाहर बहुत खाते हैं। नो इट्स ट्रू, जितना हम बाहर खाएंगे उतना हमारे मन में पैसे के अलावा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि हमने अन्न वो वाला खाया जो पैसे के लिए बनाया गया था। दूसरा है घर में हमारे कोई कुक या स्टाफ खाना बनाते हैं तो वो भी किस भावना से बनाते हैं? आप खाओ मुझे सैलरी मिले। फिर एक है जो आप खुद अपने हाथ से खाना बनाते हैं, उसमें कौन सी भावना है? प्यार है, शक्ति है, पावर है। फिर एक होता है जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में खाना बनता है, उसमें कौन सी पावर है? उसमें है परमात्मा की याद की शक्ति की, प्रेयर की, मेडिटेशन की पावर है। चारों में कुछ फर्क, चारों में कुछ फर्क है। हम जब बच्चे थे वी टुक इट फॉर ग्रांटेड कि हमें दिन में तीन बार माँ के हाथ का खाना मिलता था, हमें लगा ये तो नॉर्मल चीज है, हर एक को मिलता है। लेकिन उस तीन टाइम खाने में प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स डाइट के चार्ट के हिसाब से नहीं थे, लेकिन उसमें इतना प्यार उतनी शक्ति थी जिस वजह से आज हम इमोशनली स्ट्रांग हैं, जिस वजह से हमारी पेरेंट्स के साथ अपनी उतनी बॉन्डिंग है। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिनको माँ के हाथ का बना हुआ खाना नहीं मिलता? आज बहुत सारे घरों में द मदर ऑफ द हाउस इज नॉट कुकिंग, कहते हैं बहुत बिजी है। इतने बिजी ना हो जाएं जो अपने बच्चों को प्यार और खाने से शक्ति बनाकर ना खिला सके। ऐसा धन, बिजी तो धन कमाने में है ना, बिजी तो धन कमाने में ही है। धन उनको इमोशनली स्ट्रांग नहीं बना सकता, नहीं बना सकता है। अगर वो आपको कहें कि एक रोटी और खानी है, आप कितने प्यार से उठकर बनाएंगे? वो अगर कुक को कहें एक रोटी और बनानी है, क्या हुआ आप हंसे क्यों? वो भी तो प्यार से बनाएगा, नहीं बनाएगा प्यार से? हाँ हाँ, कहेगा आज तीन क्यों खानी है, दो खाते रोज, आज इनको ज्यादा भूख लग गई, सुबह नाश्ता भी इतना हैवी खाया था, आटा भी खत्म हो गया, पहले आटा गूंदो फिर इनके लिए रोटी बनाओ, ब्रेड ही खा ले इससे अच्छा। ये सारे थॉट्स उस खाने में जाएंगे और हमें लगेगा हमने रोटी खाई। हम सिर्फ रोटी नहीं खाते, हम उस रोटी पे आई हुई सारी वाइब्रेशन भी साथ में खाते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। हमारी कंट्री की स्पिरिचुअलिटी में, कल्चर में हर बात दी गई है और हर बात साइंटिफिक है। क्या हम रोज अपने घर में अपनी फैमिली के लिए एक मील बना सकते हैं? बना सकते हैं? और अगर उसको और एक लेवल पर लेकर जाएं कि उस खाने को परमात्मा की याद में भजन कीर्तन अच्छी प्रेयर चलते हुए बनाएं, तो फिर वो खाना नहीं प्रसाद बन जाएगा। अपने बच्चों को रोज प्रसाद बनाकर खिलाएं। आपके हॉस्पिटल में जो किचन है, अगर उस किचन की वाइब्रेशन बड़ी प्योर और पावरफुल इस तरह से बनाई जाए, लोग कम से कम नहीं तो एक या दो दिन पहले डिस्चार्ज होंगे। उससे नुकसान भी हो, हम तो ट्राई करते रहते हैं कैसे वो एक दो दिन और रुक जाए। इंटेंशन होनी चाहिए सब जल्दी जल्दी ठीक हो, सब जल्दी जल्दी अपने घर जाए। अन्न का मन पे बहुत असर होता है, क्योंकि पेशेंट एंजाइटी में होता है, फियर में होता है। अगर उसको ऐसा खाना बना के खिलाया जाए जिसमें बहुत ताकत भरी हुई हो, उसका मन जल्दी ठीक होता है तो उसका तन भी जल्दी ठीक होता है। अपने हॉस्पिटल में किचन का वातावरण और किचन में खाना बनाने वाले लोगों को यह सिखाना है कि किचन में पेशेंट्स के लिए खाना बनाना लोगों के लिए प्रसाद बनाने की तरह होना चाहिए। इतनी भावना से खाना बनाओ तो फिर वो कितने प्यार से जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। छोटी छोटी ये चीजें करेंगे तो हम कितनी दुआएं कमाएंगे। जीवन का लक्ष्य अब सिर्फ पैसा कमाना नहीं हो सकता। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, पैसा तो अब कोई भी कमा सकता है, लेकिन अब जीवन का लक्ष्य क्या कमाना, क्या कमाना? दुआएं कमाना। और दुआएं कमाने के लिए सबकी सेवा करना, सबको सुख देना, सबके फायदे का सोचना। जितना सबके लिए करेंगे उतना अपने भाग्य में दुआएं कमाते जाएंगे, और जो जितना दुआएं कमाएगा वो धन, जो जितना दुआएं कमाएगा वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाएगा, क्योंकि दुआएं वो एनर्जी है। जितनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर आएगी तो हमारे घर में जो धन कमाने की कैपेसिटी वो हमारी बढ़ जाएगी। लोग अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए इस डायरेक्शन में ये पिरामिड रखते हैं, यहाँ ये टांगते हैं, वहां लाफिंग बुद्धा रखते हैं, वो सब रखते हैं, ताकि अपने घर की एनर्जी सारी कैसी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अगर हम अपने घर में ब्लेसिंग्स कमा कर लाने लग जाएं तो हमारे घर की एनर्जी कितनी पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमारा भाग्य कैसा हो जाएगा। करना है चेंज थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ करना है छोटा छोटा। जब इतना छोटा छोटा चेंज करना शुरू कर देंगे ना, तो किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा पूछने के लिए कि मेरे भविष्य में क्या होने वाला है। जब कर्म ही अच्छा किया होगा, जब कर्म ही अच्छा किया होगा, बीज ही अच्छा बोया होगा, तो वृक्ष तो ऑटोमेटिकली अच्छा ही आना है। जब हम रोज थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते हैं, उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो हमारा हर कर्म क्लीन और पावरफुल हो जाता है। और जितना हमारी स्थिति पावरफुल हो जाती है, फिर हरेक जो हमारे सामने आता है हम उसकी सेवा बड़े प्यार से कर सकते हैं। तो आज से जब हम वापस जाएंगे और कल से जब हम सबको मिलेंगे, तो अब हमारा उनके प्रति नजरिया थोड़ा सा बदलेगा, थोड़ा सा बदलेगा। Now let's make it a very divine connection with everyone who's coming to us. Let it not just be patient hai, dawa likhi, bhej di. Nahin, ek atma hai, जिसके साथ एनर्जी एक्सचेंज के लिए हम आए हैं, लेट मी मेक इट अ वेरी प्योर डिवाइन कनेक्शन एंड लेट मी शेयर विद माय एवरी पेशेंट नॉट ओनली अबाउट देयर फिजिकल हेल्थ बट आल्सो अबाउट देयर मन, उनको कैसे हेल्दी रखना है। सोचो अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दे गुस्सा नहीं करना, लिख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? हाँ, सपोज आप मदर्स को लिखते हैं गुस्सा करना नॉट अलाउड, हम बोलते हैं ना वो नहीं सुनते, आप बोलेंगे अगर आप उनको, जैसे आप उनको बताते हैं ना कॉफी नहीं पीनी, ये नहीं पीना, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी, दवा नहीं खानी, धीरे से लास्ट लाइन लिखना गुस्सा नहीं करना, वो कहना मानेंगे आपका। और जैसे ही आप लिखेंगे वो मानेंगे, आपने कितनी आत्माओं का भाग्य बदल दिया। उनको मालूम नहीं है इसलिए वो करते जा रहे हैं, जैसे ही उनको समझ में आएगा वो कितनी बार, 10 में से 8 बार तो रुक जाएंगे करने से, और इतना अगर वो बचेंगे तो वो आने वाली आत्मा पर कितना प्रभाव का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो लिख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ट्राई कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। आपके साथ हस्बैंड भी आएगा मदर का, मतलब हस्बैंड आएगा उस लेडी का, सास भी आएगी, उनको धीरे से बोलना ये 9 महीने झगड़ा नहीं करना अलाउड। बोल सकते हैं 9 महीने आपको झगड़ा करना अलाउड नहीं है, 9 महीने इसको ताना नहीं मारना किसी भी बात का, आप बोलेंगे वो मानेंगे, ऐसे ही तो फिर वो हैप्पी बेबी क्रिएट होगा, कैसे होगा नहीं तो कैसे होगा। लेकिन अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसका अनुभव करेंगे, तो फिर कन्विक्शन के साथ औरों के साथ शेयर करेंगे, और जब ये करेंगे तो कितनी आत्माओं का उसमें कल्याण हो जाएगा। रेडी टू ज्वाइन द न्यू फैमिली? हाँ, आप गेस्ट बनकर आए थे आज, लेकिन अब सुबह से शाम तक में क्या बन गए, परिवार का हिस्सा बन गए या न बन गए? हाँ, डॉक्टर साहब अभी कह रही थी ये तो पहली कॉन्फ्रेंस है सिर्फ, इसके बाद जब कोई चीज अच्छी मिलती है तो क्या मन करता है उसके बाद क्या करना है। आप देखो, आप एक साड़ी लेने चले जाओ सिर्फ, और वहां आपको पता चले 20% डिस्काउंट चल रहा है, घर आके सबको बताते हैं या नहीं बताते हैं? बताते हैं, नहीं बताते? एक दुकान में चले जाओ, एक साबुन पे एक साबुन फ्री मिल रहा है तो भी घर आके सबको बताते हैं, जल्दी चले जाओ वेडनेसडे तक सेल है, एक साबुन पे एक साबुन फ्री। नेचुरल इंस्टिंक्ट कि जब हमें कुछ अच्छा लगे, कुछ प्राप्ति हो, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या मन करेगा कि हम औरों के साथ शेयर करें। तो ऐसे ही हमारे साथ भी अपना अनुभव शेयर करने के लिए डॉक्टर नितिका दिल्ली से हमारे बीच आई हैं। तो पहले हम उनका वेलकम करते हैं, फिर हम इस पे मेडिटेशन करेंगे कि हमें कैसे सेवा करनी है और कैसे अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करना है। डॉक्टर नितिका, आपकी तरह ही, आपके ही फैमिली की और हमारी ही फैमिली की बहुत सीनियर गायनाक है मैक्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, सो वी वेलकम हर।
ओम शांति। आज अपने कुछ हमने अपने मेडिकल नॉलेज को स्पिरिचुअल चश्मे से लगा के देखा ना, होलिस्टिक हीलिंग मैंने तो सीखी। आई एम श्योर इस जर्नी पे चल पड़ेंगे तो सब सीखेंगे धीरे धीरे। मेरी जर्नी बहुत लंबी नहीं है, बट एज दीदी सेड, शेयरिंग इज आर बेसिक क्वालिटी। मूवी भी अच्छी लगती है ना कोई, तो व्हाट्सएप पे इंटरव्यू से पहले चला जाता है, बहुत अच्छी है, जरूर देख लेना, टिकट टाइम से बुक करा ले। तो एक छोटी सी चीज शेयर करने लगी हूँ आपसे, माय ओन एक्सपीरियंस एक्चुअली, विच आई नेवर रियलाइज्ड जस्ट व्हेन आई स्टार्टेड टू नो माय ओन सेल्फ यहाँ आने के बाद, क्योंकि थोड़ा टाइम दे देता है माइंड हमारे को, बहुत ज्यादा बिजी, बिकॉज आई हैव बीन इन हॉस्पिटल, 400-bedded हॉस्पिटल, बहुत सारे गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वी हैव इट्स आवर लाइफ इज फुल ऑफ लॉट ऑफ वर्क एंड ऑफ टाइम ड्यूटीज, सो वो उतना रेस्ट नहीं मिलता तो चलता चला जाता है। आई वॉज डूइंग माई मेडिकल, दिस इज माई फर्स्ट ईयर पीजी एंड आई कंसीव्ड एज ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस डू, एंड एक तो वही है काफी अपने में स्ट्रेस है. आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव बीन ग्राइंडेड इन दैट थ्री इयर्स टाइम. एंड आई वाज इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, कंसीव हो गया पहले गए नहीं, अभी तो बहुत काम है, थीसिस करना है, अपने प्रोफेसर के पास गए, बात ही नहीं सुनी, वापस भेज दिया. नो प्रॉब्लम, यू कांट. पहले तो थॉट खुद मेडिकल प्रोफेशन में होने के बाद माई इन-लॉज आर बोथ डॉक्टर्स, सो सपोर्ट सारा था, बट फिर भी सोच कहीं ना कहीं हमारी, तब तो नॉलेज नहीं थी, यही थी. आगे बढ़ते गए, अपना काम करते गए. देयर वर अ फ्यू थिंग्स विच आई वेंट थ्रू. माय मदर वाज गोइंग थ्रू कैंसर ट्रीटमेंट एंड इट वाज समथिंग लाइक आई विल लूज हर, आई मे लूज हर. शी इज गेटिंग कीमोथेरेपी, आई हैव टू गो टू एम्स विद हर. सो कंसीव किया हुआ कहीं बैक ऑफ माइंड पे था, बट बीइंग अ मेडिकल, इन मेडिकल प्रोफेशन किसी ने ऐसा गाइड भी नहीं किया, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था इस गर्भ संस्कार का. बट हाँ, हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है, टाइम से मेडिसिन लेनी है वो बहुत जरूरी है, वो सारा पूरा बिल्कुल पूरा चला. इट वॉज अ डिफिकल्ट फेज. आई वेंट इन द प्रीटर्म लेबर एंड मोस्ट ऑफ अस डॉक्टर्स डू. वी हैव लो बर्थ वेट बेबीज, वी हैव प्रीटर्म लेबर्स. एंड जब मैं इस जर्नी पे शुरू हुई तो मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी, विच आई विल शेयर विद यू ऑल्सो. वॉट इज द कनेक्ट, हाउ इज द कनेक्ट, हाउ डज डाइट एंड स्ट्रेस, हाउ डू दे हैव अ रोल. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो क्रिएट होता है वो कैसे मदर की थॉट्स और फीलिंग्स को चेंज करके, कैसे हमारे हॉर्मोन्स को हमारे बेबी के सर्कुलेशन में डाल के, और कैसे फिर वो फीटल ब्रेन को सेंसिटाइज करता है. इट्स आई हैव डन रिसर्चेस. मुझे नहीं पता था, मुझे अभिमन्यु का भी कब से पता है, जब से हम छोटे हैं, बट मैंने कभी अप्लाई करने की खुद पे तो कोशिश नहीं की. नाउ माय सन इज 18 इयर्स ओल्ड, सो ही वाज ही एंड इवन व्हेन आफ्टर इन दिस लास्ट टू इयर्स थ्री इयर्स आई हैव सीन हाउ मच ऑफ अ पर्सनैलिटी एक्चुअली आई मेड. He used to get up at night with panic attacks, crying. I never used to understand why is he crying. Then when I started going to Max at night, no, he was only one out of all who would ask me, "Mummy, come to phone kar dena pahunch ke." Mummy, come here, you are going to go. No, no, you have phone kar dena pahunch ke. Pahunch ke na. ठीक है, कर देंगे. And very caring. कुछ भी हो घर में, किसी को कोई बीमारी हो, बस घूम रहा है. But अपना डेफिनेटली यू नो दैट स्ट्रेस विच वी क्रिएट, वो बच्चे के लिए अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिवनेस, वो सब होते हुए भी ये क्वालिटीज भी थी. यू नो इट वॉज वेरी वेरी अजीब ब्लेंड, मैं कहूंगी. मुझे अब वो समझ आता है, बिकॉज मैं वेन आई यूज टू गो टू टीचर्स, दे यूज टू टेल मी नो इज अ वेरी ऑनेस्ट चाइल्ड, ही विल डू वेल. वैसे 12th आ गई है अभी तक, इट्स ऑन द जर्नी, स्टिल ऑन आई वुड से. बट दिस इज सो इम्पोर्टेंट दैट वट वी एक्चुअली थिंक, कहीं कहीं इट इज इफेक्टिंग. ऑफकोर्स पुराना जो संस्कार है, डेफिनेटली बेटर चाइल्ड हैज बीन ऑन अ फास्ट जर्नी. सो देन आई थॉट आई हैव टू साइंटिफिकली अंडरस्टैंड इट. ठीक है, थोड़ा बहुत हमने जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आई एक्सपेक्ट कि वो ठीक है, बट आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट. सो मे बी सम ऑफ यू आर इवन अवेयर देर इज अ एसोसिएशन ऑफ प्री नेटल एंड पेरी नेटल साइकोलॉजी एंड हेल्थ, दी अपाह फाउंडेशन. In 1983, David Chamberlain, the birth psychologist, he has done a lot of research. India में research करना बहुत मुश्किल है, और humans पे बहुत मुश्किल है. वहां तो NIH, National Institute of Health, they give big grants. So the problem over India was that they have been working and they have done real good work. So actually, I would say birth psychology is the science behind garbh sanskar. They have actually class say taken that how in primates and non-primates they have done studies wherein they have seen that how the stress which the mother is creating, how are the glucocorticoid receptors of the fetal brain, how are they sensitized, how are those receptors in the liver, how do they get sensitized, how do those receptors in the kidney, they get sensitized. We all know fetal origin of adult diseases, the metabolic syndrome, you know, everybody is actually facing. How many polycystic ovarian patients do we see? PCOS, so common. It's all scientific. We all just have to, I feel, go in, understand, take our own experiences and in doing that little, that this spiritual journey actually gives you the time to your own self. It gives us the time that we need to actually learn more, because we want to give more and we have a lot of opportunity to give every moment. What we say, what we do, it makes a big difference. They just follow it. But for that we need to be convinced. And this little experience which I had in my own family, it made me more and more, you know, because I was convinced that I have to find it, so probably I took that path on this journey. And we have to go a long way. And the more we are, I'm sure that we can really create children who are healthy, who are happy, and how contented our own families are going to be. And similarly, it's, you know, it's just like a ripple effect. Any good thing is anyway going to spread soon. So I'm so convinced about it, and I'm sure that everybody who's been here today with us, wo bahut acche se convinced honge, thoda sa step uthana hai bas, knowing our own self. Bahut jo knowledge hai na, actually sabko mil gaya hai, I'm sure. But wo powers jo chahiye hoti hai na, us knowledge ko execute karne ke liye, uske liye roz thoda sa time. This is my experience, and mujhe lagta hai ki sharing is caring. So I thought I should just take this little time and share with all of you. Thank you.
एक गायनक होते हुए भी ये ना पता होना कि my thoughts are going to influence my child. अगर आप उस बच्चे को देखें अब, because I get to meet him very often. उसके अंदर दोनों संस्कार हैं, जो डॉक्टर नितिका ने संस्कार क्रिएट किया ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी ऑफ एंग्जाइटी फॉर हर मदर, फियर ऑफ लूजिंग द मदर, वो सारा संस्कार उस बच्चे के अंदर है. वो जल्दी जल्दी डरता है, उसको डर लगता है कि किसी को कुछ हो ना जाए. घर में कुछ भी होता है, उसको डर लगता है कि इनको कुछ हो ना जाए, पापा को कुछ हो ना जाए, मम्मी को कुछ हो ना जाए, हमारे घर को कुछ हो ना जाए. थॉट कहां से आई वो? क्योंकि वो 9 महीने इसके मन पे कोई और थॉट हुई नहीं होगी, क्योंकि इसके मन पे यही थॉट हुई होगी मेरी मम्मी को कुछ हो ना जाए. पहुंच गई ना बच्चे तक. लेकिन साथ साथ उस 9 महीने अपनी मम्मी का बहुत प्यार से ध्यान रखा. आज वो बच्चा हर एक का बहुत प्यार से ध्यान रखता है. कुछ भी हो जाए, वो बेटा होकर, घर में बाकी और 4 बेटियां, लेकिन वो बेटा होकर सबका इलाज करता है, ध्यान रखता है. वो संस्कार कहां से आया? वो संस्कार कहां से आया? वो भी वो 9 मंथ्स में से ही आया. एक गायनक होते हुए भी अगर ये नहीं पता होगा, तो बाकी सबको कैसे पता होगा ये? कैन अदर पीपल नो? क्या उनको पता हो सकता है? तो अब ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? अब ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? अब देखो, वो 9 महीने अगर हमने नहीं ध्यान रखा, आज उस बच्चे के अंदर से डर का संस्कार निकालना कोई इजी काम नहीं हो रहा है. इजी नहीं होता है. संस्कार डिलीट जल्दी जल्दी नहीं होते हैं. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. आज चाइल्ड साइकाइट्री शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज बच्चों के अंदर ये हाइपर एक्टिविटी, ये सब जल्दी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं. क्यों ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि आज की मदर ज्यादा स्ट्रेस्ड है उस पीरियड के दौरान, क्योंकि आज की मदर वर्किंग है. पहले की मदर कैसी थी? 9 महीने बिल्कुल रेस्ट एंड ईज एंड रिलैक्स. तो बच्चा भी क्या हो रहा था? रेस्ट एंड ईज एंड रिलैक्स. लेकिन आज उस 9 महीने के दौरान मदर कैसी है? तो फिर ऑटोमेटिकली जो बच्चे आज हमारी जनरेशन में आ रहे हैं, उनके अंदर ये सारी छोटी छोटी चीजें. तो ये अब आज से, आज हम यहां इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक स्टेप ऊपर उठाएंगे, कि हमें अपने आने वाली सभी मदर्स को इस बात की नॉलेज देनी है कि प्लीज ध्यान से सोचना, प्लीज ध्यान से बिहेव करना, अपने काम को ईज डाउन कर देना इस टाइम पर. पेरेंट्स बहुत इजीली डिस्कस करते हैं अपने घर में, या फैमिली डिस्कस करती है, लड़का होगा लड़की होगी, करते हैं ना डिस्कस. लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, फिर हमने तो कपड़े भी खरीद लिए उसके लिए, क्योंकि हमें तो पता ही है हमारे घर लड़का ही होगा। सोचो एक लड़की बैठ कर अंदर सुन रही है, याद ही याद होगी आंट, एक लड़का अंदर है और फैमिली कह रही है लड़की होगी लड़की होगी, उस बच्चे को कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? अनवांटेड चाइल्ड, रिजेक्शन। लेकिन किसी पेरेंट को ये नहीं पता था कि ये करने से वो उस आत्मा को रिजेक्शन की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। बहुत सारे लोग आज हमें मिलते हैं जो बचपन से ही कहते हैं आई फील रिजेक्टेड बाय माई पेरेंट, जबकि पेरेंट उसको नेक्स्ट 25 साल समझाता रहेगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बट आई फील वेरी रिजेक्टेड बाय माई पेरेंट, इट हैपेंड दैट टाइम। एक एंग्जाइटी क्रिएट करना, हम उसको संभाल सकेंगे कि नहीं, हम उसको अच्छा फ्यूचर दे सकेंगे कि नहीं, बच्चे को कौन सी वाइब्रेशन जा रही है। अगर हम अपने घर किसी मेहमान को बुलाएं और हम सुबह से सोचना शुरू करें आटा पूरा होगा कि नहीं, खाना बनेगा कि नहीं, नल में पानी आएगा कि नहीं, तो उस मेहमान को कौन सी वाइब्रेशन जाएगी? क्या आप बहुत भारी पड़ रहे हैं हमारे ऊपर, पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? ऐसे ही तो उस बच्चे को वाइब्रेशन मिल रही है, वो हमारी सैलरी पूरी पड़ेगी कि नहीं, हम इसको संभाल पाएंगे कि नहीं। ये सारी वाइब्रेशंस आर व्हाट इज रीचिंग द सोल टू क्रिएट एन अनवांटेड चाइल्ड, लेकिन ये उनको किसी ने नहीं बताया। तो क्या हम सब इस जिम्मेवारी को आज उठाते हैं? उठाते हैं? विल वी शेयर ऑल दिस विद द मदर्स ना? यस। एंड फिर जैसे जैसे आप और संपर्क में रहेंगे, किताब देखेंगे, सीडीज देखेंगे, आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। Somebody was sharing in the break, oh, this is not scientific. Is this scientific? Is this scientific or is this spiritual? Is this scientific or is it spiritual? The knowledge we get from spirituality, but the proof we are seeing scientifically. Dikh raha hai na, scientifically proved hai. So it matches with what we are doing. So let us share this with everybody. आप सेंटर से संपर्क में रहें, बहनों को बुलाएं और अपने यहाँ वर्कशॉप्स भी कर सकते हैं अपने सब पेशेंट्स के लिए। हम ऐसा सोच रहे थे कि हर हॉस्पिटल में, हर क्लिनिक में अगर ये छोटी छोटी क्लासेस होनी शुरू हो जाएं, दो दो घंटे के लिए, सारी जो आपकी मदर्स हैं 15-20 मदर्स का आप ग्रुप बनाएं और उनको दो दो घंटे की ये क्लासेस दें, एंड एवरीथिंग एब्सोल्यूटली फ्री, देयर विल नॉट बी अ 1 रूपी कॉस्ट अटैच टू एनी ऑफ देम। आपको नहीं लगता दैट वी विल ऑल बी टुगेदर क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड? यस। सो वेलकम टू द फैमिली एंड वेलकम टू अर्निंग मेनी मेनी मोर ब्लेसिंग्स एंड क्रिएटिंग हैप्पी चिल्ड्रन फ्रॉम टूडे। Thank you so much. Om Shanti. Let's sit back now. 2 minutes in meditation. Comfortable होकर बैठे और अपने जीवन की यात्रा को फिर से एक बार देखते हैं. Let me look at myself. Soul on the journey. हर आत्मा conscient energy है. Energy which thinks, feels, and radiates to everyone around. We are all connected to each other by our thoughts and feelings. हमारी सोच का प्रभाव चारों तरफ पड़ रहा है, प्रकृति पर भी। इस यात्रा पर अनेक आत्माएं मिली, अनेक कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुए, कुछ बहुत ब्यूटीफुल, कुछ एक में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। किसी एक रिश्ते को सामने लेकर आए, जहां से एनर्जी उतनी कंफर्टेबल नहीं जितना हम चाहते हैं, आज अंडरस्टैंडिंग है कि वो हमारे साथ जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कभी ना कभी ऐसा कर्म किया था। तो सबसे पहले हम उनसे क्षमा मांगते हैं। और आज से पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। आज से हमारे से उनके लिए हर सोच क्लीन प्योर वाइट एनर्जी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरी सोच मेरा भाग्य लिखती है। माय थॉट्स क्रिएट माय डेस्टिनी। सबको सुख देना, सबको सहयोग देना। लाइफ इज अ जर्नी ऑफ कोऑपरेशन, शेयरिंग एंड केयरिंग। सबको दुआएं देना और दुआएं कमाना। पर्पस ऑफ माय लाइफ। आज से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, गुड विशेष। जैसे जैसे हम ये वाइब्रेशन औरों को रेडिएट करेंगे, हम लाइट हल्के होते जाएंगे। सब कुछ जो हमने आज सुना, जो कुछ हमें अच्छा लगा, हम सबके साथ शेयर करेंगे। We will radiate this into the world. This is our contribution towards creating that new beautiful world. दस मिनट सुबह ऐसे मेडिटेशन करें, आपको फील हुआ अभी हॉल का वाइब्रेशन चेंज हो गया? फील हुआ? ओनली टू मिनट्स, दैट वॉज ओनली टू मिनट्स बाय द क्लॉक। अगर ये दो मिनट हम ओटी में करें तो ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा। और इस वाइब्रेशन में वो नई आत्मा जब आएगी तो उसको सबसे पहली वाइब्रेशन इस दुनिया की कौन सी मिलेगी? See the beginning for that soul. ऐसी vibration से हर आत्मा को welcome करे तो वो vibration उस आत्मा की foundation में बैठ जाएगी शुरू में। Let us all together create miracles. Thank you so much. Om Shanti.